डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 20 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के और भजन की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या 20 पवित्र स्थल ऋतुए वस्तुए और कार्मिक है। आपके नोट्स में मैंने उन तीन चरणों पर ध्यान दिया जो भजनकार विश्वास की सीढ़ी से नीचे उतरता है, और फिर वे सात कदम जिनसे वह विश्वास के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए वापस चलता है, और निर्णायक मोड़ तब आता है जब वह मंदिर में प्रवेश करता है, और मेरा मानना है कि वह ईश्वर के प्रतीकों को देखता है जो उसके विश्वास को बहाल करते हैं। तार्किक रूप से कहें तो उनका पहला कदम पद 3 में है जब वे कहते हैं, जब मैंने दुष्टों की समृद्धि देखी। दूसरे शब्दों में उन्होंने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण उस चीज से शुरू किया जिसे कीहोल धर्मशास्त्र कहा जा सकता है। वह अपने अनुभव के सीमित क्षितिज के भीतर जो देख सकता था उसके आधार पर वास्तविकता का निर्धारण कर रहा था जो शायद 70 या 80 वर्ष का होगा। यह उस घोड़े की तरह है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वह जो देख सकता है उससे वास्तविकता का दृश्य ले रहा है। और श्लोक 4 और 5 में वह जो देखता है वह दुष्टों की समृद्धि देखता है। श्लोक 6 से 8 में वह देखता है कि वे अधर्मी हैं और वे जो करते हैं उसमें दुष्ट हैं और उपहास करते हैं और द्वेष से बोलते हैं। और वे न केवल अधर्मी हैं, वे सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ईश्वर के बिना भी अधर्मी हैं। उनके मुंह स्वर्ग का दावा करते हैं, उनकी जीभें प्रियवी पर अधिकार कर लेती हैं। श्लोक 11 वे कहते हैं, परमेश्वर को कैसे पता चलेगा, मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए वे भगवान के बिना रहते हैं। फिर वह श्लोक 12 में अपनी समस्या का सारांश प्रस्तुत करता है। दुष्ट ऐसे ही होते हैं, सदैव निश्चिंत, वे धन इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर उसका अपना विरोधाभास यह है कि वह वाचा का पालन करते हुए भी पीड़ित होता है। उनकी मूल गलती यह है, जैसा कि बिशप रॉस कहते हैं, उनकी मूल गलती यह है कि वह भगवान को अपनी समस्या को परिभाषित करने की अनुमति देने के बजाय अपनी समस्या से भगवान को परिभाषित कर रहे थे। उन्होंने अपनी समस्या से शुरुआत की और फिर उन्होंने ईश्वर को परिभाषित किया। यदि आप अपनी समस्या से शुरुआत करते हैं तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, या यदि उसका अस्तित्व है तो वह आवश्यक रूप से अच्छा नहीं है या सिर्फ उसकी अन्य उदात्तता नहीं है। तो आप समस्या से शुरुआत करें, यह उसका ईश्वर से दूर और नीचे जाने का पहला कदम है जब वह ईश्वर को अपनी समस्या से परिभाषित करता है। ईश्वर से नीचे और दूर जाने का उसका दूसरा कदम यह है कि जब उसने ईर्ष्या की, दूसरे शब्दों में उसने उनकी समृद्धि को अपना ईश्वर बनाया, तो वह उनसे ईर्ष्या कर रहा था। भ्रमित होना गलत नहीं है, ईसाई अनुभव में भ्रमित होना सामान्य बात है। प्रेरितिक समुदाय के अनुभव का जिक्र करते हुए पॉल ने 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 में यह बात कही है। वह अध्याय 4 श्लोक 6 में कहते हैं, आइए देखें श्लोक 4 6 से 8 तक। खैर, मैं 6 से शुरुआत करूंगा। भगवान के लिए जिन्होंने कहा, अंधेरे से प्रकाश चमकने दो, उन्होंने हमें मसीह के चेहरे पर प्रदर्शित भगवान की महिमा के ज्ञान की रोशनी देने के लिए हमारे दिलों में अपनी रोशनी चमकाई। लेकिन हमारे पास यह खजाना मिट्टी के घड़ों में यह दिखाने के लिए है कि यह सर्वव्यापी शक्ति ईश्वर की ओर से है, हमारी ओर से नहीं। अब श्लोक 8 पर ध्यान दें, हम हर तरफ से दबाए गए हैं लेकिन कुचले नहीं गए हैं, भ्रमित हैं लेकिन निराशा में नहीं हैं, सताए गए हैं लेकिन त्यागे नहीं गए हैं, मारे गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए हमारे कष्टों से भ्रमित होना गलत नहीं है, यह सामान्य ईसाई अनुभव है, लेकिन ईर्ष्या करना और समृद्धि बनाना और हमारे ईश्वर को पाप बनाने की हमारी अपेक्षा पाप है, क्योंकि अब ईश्वर से संतुष्ट रहना और उस पर भरोसा करना नहीं है। तीसरा कदम यह है कि वह लगभग अपनी पकड़ खो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह ईश्वर पर भरोसा करने के विश्वास के दायरे से लगभग बाहर निकल गया था जो अपनी वाचाएं रखता है। भगवान की ओर उसके साथ कदम पीछे देखें। पद 15 में वह अपने जीवन दर्शन के साथ नहीं रह सका कि ईश्वर बुराई को पुरस्कार देता है और अच्छे को दंडित करता है। यदि मैं ऐसा बोलता तो मैं तुम्हारे बच्चों को धोखा दे देता। वह इसे नहीं सिखा सका। उसका पूरा विवेक वहां नहीं जा सका, लेकिन कोई न कोई बात थी। या तो ईश्वर अच्छा है और दुख की अनुमति देता है, या फिर कष्ट है और ईश्वर अच्छा नहीं है। वह पढ़ा नहीं सका। ईश्वर अच्छा नहीं है। उसका दिल इसकी इजाजत नहीं देता। उनका कहना है कि वह इन सब से परेशान थे। जब मैंने यह सब समझने की कोशिश की तो इसने मुझे बहुत परेशान किया। लेकिन उनकी दूसरी बात पर गौर करें। उसने परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश किया। दूसरे शब्दों में वह एक ऐसे स्थान पर गया जहां वह अपने संकट में भगवान से मिल सकता था। कुछ लोगों के साथ समस्या यह है कि जब वे संकट में होते हैं तो वे ईश्वर से दूर चले जाते हैं और कभी भी ईश्वर को उनसे मिलने और संकट से निपटने में उनकी मदद करने का अवसर नहीं देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अभयारण्य में प्रवेश किया। वह अभयारण्य में है। तब मुझे उनकी अंतिम नीति समझ में आई। वहां उन्होंने ईश्वर की पवित्रता, उनकी दया, उनके अनंत जीवन, उनकी अंतिम विजय के प्रतीक देखे। जब उसने वह सब देखा तो उसे पता चल गया कि यह सच है। ईश्वर के उन प्रतीकों ने उससे गहराई से बात की। इसीलिए वे पवित्र शास्त्र में हैं, जिन्हें हम कल्पना में जी सकते हैं। जब हम अपनी कल्पना में ईश्वर की सच्चाइयों को देखते हैं और हम मंदिर में रहते हैं और वे सभी यीशु मसीह में अपनी अभिव्यक्ति पाते हैं और हम उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान को देखते हैं, तो वे प्रतीक हमें दुष्टों के अंत का सामना करने और समझने में सक्षम बनाते हैं, दुष्टों की अंतिम नियति। उसे एहसास होता है कि जब वह सिर्फ भौतिक चीजों को देख रहा है तो वह एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। वह मैदान में सिर्फ एक जानवर था। वह कहता है कि मैं नासमझ और अज्ञानी था। मैं तुम्हारे सामने एक क्रूर जानवर था। फिर श्लोक 23 और 24 में वह पहचानता है कि प्रभु उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे महिमा की ओर ले जा रहे हैं। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे मेरे दाहिने हाथ से पकड़ लो। आप अपनी सलाह से मेरा मार्गदर्शन करें और उसके बाद आप मुझे महिमा की ओर ले जाएंगे। तो वह कीहोल धर्मशास्त्र को पार करने में सक्षम है। उसे एहसास होता है कि उसके सभी कष्टों के दौरान भगवान ने उसका हाथ थाम लिया है और वास्तव में उसे मजबूत किया है और उसे महिमा के बिंदु तक पहुंचाया है। ठीक वैसे ही जैसे उसने मसीह का हाथ पकड़ा और उसे जंगल में ले गया और उसे सभी प्रलोभनों से पार कराया और स्टील का परीक्षण किया और उसे अपनी अंतिम जीत के लिए तैयार किया। वह इसराइल को जंगल में ले गया। वह दाऊद को शाऊल द्वारा अस्वीकार किए जाने के अनुभव के जंगल में ले गया और विश्वास से जीना सिखाया। ईश्वर हमें दाहिना हाथ पकड़ता है और हमें मजबूत करने और अपनी उपस्थिति में अंतिम महिमा की ओर ले जाने के लिए हमें हमारे संकट से निकालता है। अंत में श्लोक 25 में वह पाता है कि स्वर्ग में मेरा कौन है, परंतु तुम और पृथ्वी पर तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में मेरे पास ईश्वर है। मैं अपने आप से पूछता हूं, मैं स्वर्ग क्यों जाना चाहता हूं? खैर, मैं अपने माता पिता और अपने कुछ रिश्तेदारों से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक हूँ और यह अच्छी बात है। लेकिन अगर यीशु वहाँ नहीं है तो मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह यीशु ही है जो स्वर्ग स्वर्ग बनाता है। यही स्वर्ग की सुंदरता है। यह स्वयं मसीह और यह सारी सुंदरता है। और फिर अंततः अब उसके पास भगवान है। तो यदि आपके पास धन संपत्ति का संतुलन हो या ईश्वर हो, तो आप किसे प्राथमिकता देंगे? मैं शाश्वत उदात्त ईश्वर को अस्थाई धन से ऊपर ले जाऊंगा जो जंग खा जाता है और फीका पड़ जाता है और हमें बुरे व्यवहार की ओर ले जा सकता है। लेकिन मैं भजन में शामिल हो गया क्योंकि मंदिर शाश्वत सत्य का प्रतीक है। भजनों के कार्य के बारे में मैं जो अगली बात कहना चाहूंगा वह यह है कि वे विशिष्ट हैं। मेरा मतलब है भजनों के नहीं बल्कि पंथ के। यह विशिष्ट है। यह शाश्वत वास्तविकता को चित्रित करने के लिए एक दैवीय इच्छित दृश्य रूप है और भविष्य में क्या वास्तविक या वास्तविक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यहाँ स्वर्ग में हमारे पास शाश्वत वास्तविकता है। यह आध्यात्मिक है। मुझे नहीं लगता कि हम कर सकते हैं। यह एक रहस्य है। हम इसे कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यह अनंत काल की वास्तविकता है। कुछ है और जो है वह है पिता परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो था, है और सदैव रहेगा। वही तो है। और मंदिर ने उस वास्तविकता को चित्रित किया। यह स्वर्गियों की एक प्रति थी और यह उसकी एक प्रति थी जिसके मूल में ईश्वर की उत्कृष्ट नैतिक इच्छा है, जैसा कि हम मंदिर का वर्णन कर रहे थे। तो समकालिक स्तर पर यह स्वर्ग के उस अर्थ में एक प्रकार है जिसके द्वारा हम स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिक स्तर पर यह न केवल एक उदाहरण, एक तस्वीर, स्वर्ग की एक प्रति है, बल्कि यह आने वाले महानतम का एक प्रकार है। ताकि मंदिर ईश्वर की उपस्थिति हो और इत्यादि मसीह का एक प्रकार है जिसमें ईश्वर अपनी संपूर्णता में वास करता है। यह एक प्रकार का चर्च है जो ईश्वर का मंदिर, उसकी पवित्रता, उसका शाश्वत जीवन, उसकी उपस्थिति, उसके संस्कार हैं। और इसलिए यह एक प्रकार है जो मसीह और चर्च में अपनी पूर्ति पाता है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। जब हम स्वर्गीय वास्तविकता में आते हैं तब भी पूर्णता होती है जब हम पुनर्जीवित मसीह के पास उनके आध्यात्मिक शरीर के साथ आते हैं और हमारे पास नए शरीर, पुनर्जीवित आध्यात्मिक शरीर होंगे। हम वास्तव में एक ऐसी वास्तविकता में होंगे जिसे व्यक्त करना हमारे लिए शब्दों से परे है। तो यह पंथ का कार्य है। यह एक प्रकार का स्वर्ग है। यह स्वर्ग की एक प्रति है और यह आने वाले समय का एक प्रकार है। और यही मैं सुझाव दे रहा हूं कि यह कल्टस का दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य पवित्र है कि वास्तव में आध्यात्मिक शब्दों के साथ इन भौतिक वास्तविकताओं के माध्यम से आप वास्तव में भगवान के साथ संवाद में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पुजारी रोटी खाएगा, क्योंकि वह बलिदान चढ़ाएगा, क्योंकि उन्हें क्षमा मिलेगी। वे वास्तव में परमेश्वर के जीवन और क्षमा में भाग ले रहे थे। और अंत में प्रतीकात्मक होने और अनुकरणीय और विशिष्ट होने और संस्कारात्मक होने के अलावा, चौथा मैं कहता हूं कि यह कलात्मक है। यह प्रचार है। किसी विचार या विचारधारा को बढ़ावा देना शब्द के सर्वोत्तम अर्थ में है और वास्तुकला ऐसा कर सकती है। मुझे याद है जब मैं लगभग 4 साल का था, शायद 5 साल का था, मेरे माता पिता मुझे वाशिंगटन डीसी में काम करने वाले एक चाचा से मिलने ले गए। इसने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे संगमरमर की इमारतें, वह क्लासिक यूनानी वास्तुकला, शक्ति की बात करने लगी। यह अधिकार की बात करता था। इसमें सहन शक्ति की बात कही गई थी। जब मैं वापस गया, शायद 50 60 साल बाद तो इसने वास्तव में मेरे अंदर गहराई से बात की, भले ही मुझे याद था कि सब कुछ कहा था, इसने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला। इसीलिए चर्च निर्मित गिरजाघर। इसने ईश्वर की, चर्च के स्थायित्व की, उसके अधिकार की बात की। इसीलिए प्रबोधन काल में विश्वविद्यालयों ने अपनी भव्य वास्तुकला के द्वारा चर्च को धर्मनिरपेक्ष राज्य से बदलने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, यदि आप यहाँ वाशिंगटन विश्वविद्यालय जाते हैं और आप उनकी लाइब्रेरी में जाते हैं तो यह बिल्कुल कैथेड्रल जैसा दिखता है। जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हैं, इसमें त्रिधनुषाकार अवकाशित द्वार हैं, इसमें रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, इसमें आलों पर मूर्तियां बनी हुई हैं। लेकिन पॉल या जॉन या प्रेरितों आदि की मूर्तियां होने के बजाय उनके पास रूसो, वोल्टेयर और तर्कवादियों की मूर्तियां हैं। यह पूजा का एक नया रूप है। और जब आप उस परिसर में होते हैं तो इसका प्रभाव छात्र पर पड़ता है कि यह वास्तविकता है। यह वास्तुकला का मूल्य है। यह वास्तविकता की बात करता है। मैं सुझाव दे रहा हूं कि इसीलिए हमारे पास सियोन के गीत हैं, क्योंकि वे आपको सियोन में आने और यह देखने के लिए कहते हैं कि भगवान क्या कर रहा है, क्योंकि यह शब्दों के अलावा दूसरे स्तर पर संचार करने का एक तरीका है। यहां सुंदर भजन है, मुझे लगता है एक गीत, कोराज के पुत्रों का एक भजन। प्रभु महान है और हमारे परमेश्वर के नगर में उसके पवित्र पर्वत पर सबसे अधिक स्तुति के योग्य है। उदात्तता में सुंदर संपूर्ण पृथ्वी का आनंद। ज़ाफ़ोन की चोटियों के समान महान राजा का नगर सियोन पर्वत है। वैसे यह भी उगारिटिक मिथकों का ही संकेत है, क्योंकि बाल का पर्वत ज़ाफ़ोन था और ज़ाफ़ोन का अर्थ उत्तर भी होता है। तो जैसे इसराइल में समुद्र का मतलब पश्चिम और नेगेव का मतलब दक्षिण हो सकता है, इस पर्वत का मतलब उत्तर हो सकता है। तो यह उत्तर में वह पर्वत है जहां बाल की पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इसराइल के लिए सियोन वही था जो कनानी लोगों के लिए ज़ाफ़ोन था जो बाल की पूजा करते थे। तो वह कहता है, यह ऐसा है जैसे ज़ाफ़ोन की ऊंचाई सियोन पर्वत है। ज़ाफ़ोन को महान राजा के शहर के रूप में भी जाना जाता था। भगवान उसके गढ़ों में है। उसने खुद को उसका गढ़ दिखाया है। जब राजा एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़े तो उन्होंने उसे देखा और आश्चर्यचकित रह गए। वे भयभीत होकर सियोन में भाग गए। कांपते हुए समुद्र और प्रसव पीड़ा में पड़ी स्त्री का सा दर्द। तूने उन्हें तर्शीश के जहाजों की नाई नष्ट कर दिया और पूरब की हवा से तोड़ डाला। जैसा हमने सुना है वैसा ही हमने सर्वशक्तिमान यहोवा के नगर में देखा है। परमेश्वर उसे सर्वदा के लिए सुरक्षित रखता है। हे भगवान, आपके मंदिर में हम आपके अटल प्रेम पर ध्यान करते हैं। हे परमेश्वर, तेरे नाम के समान तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक पहुंचती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है। सियोन पर्वत आनंदित होता है। यहूदा के गांव तेरे न्याय के कारण आनंदित हैं। वह मंडली से कहता है, सियोन के चारों ओर चलो, उसके चारों ओर घूमो, उसके मीनारों को गिनो, उसकी प्राचीरों पर अच्छी तरह विचार करो, उसके गढ़ों को देखो ताकि तुम अगली पीढ़ी को उनके बारे में बता सको। क्योंकि परमेश्वर युगानुयुग हमारा परमेश्वर है। वह अंत तक भी हमारा परमेश्वर रहेगा। और इसलिए आपके पास सियोन के ये गीत हैं जो सियोन की महानता का जश्न मनाते हैं। वे आपको आने और इन इमारतों को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं जो उस समय भगवान की स्थायित्व, सहन शक्ति, अधिकार और ताकत की बात करती थीं। खैर, यहां आम तौर पर कल्टस को देख रहा है। हमने इसे परिभाषित किया है। हमने पवित्र स्थल को मंदिर के रूप में, उसकी नक्काशी के रूप में देखा है। हमने इसके कुछ कार्य देखे हैं। अब हम संस्कृति के पहलुओं पर नजर डालते हैं। यहाँ हमें उन पहलुओं को विभाजित करने की आवश्यकता है जो मूसा द्वारा शुरू किए गए थे और जिन्हें मंदिर के साथ पेश किया गया था। इसलिए पंथ के पहलू मोज़ेक तंबू से शुरू हुए और इसे शाही मंदिर से बदल दिया गया। मूसा के काल में उनके पास जो था वह एक पवित्र स्थल था। यही वह जगह है जहां तंबू या तंबू खड़ा किया गया था। यह वह स्थान था जहां भगवान स्थित था, लेकिन यह कभी भी निर्धारित नहीं किया गया था कि वह कहां स्थित होगा। वहां पवित्र वस्तुएं थीं, वहां संदूक था, वहां तंबू था, वहां जहाज थे, याजक पर एपोद था, उसके कवच के भीतर उरीम और तुम्मीम था। फसह के पवित्र मौसम थे जो जौ की फसल के संबंध में आते थे। पिंतेकुस्त था जो गेहूं की फसल के सिलसिले में हुआ था। नए साल में सुक्कोट था जो अंगूर को दबाने और जैतून को दबाने से जुड़ा था। वहां पवित्र कार्मिक थे। मूसा ने वह सब कुछ दिया। उन्होंने पवित्र बलिदानों और पवित्र भेंटों की भी व्यवस्था की, लेकिन लगभग कोई शब्द नहीं है, कोई संगीत नहीं है। हमारे पास केवल यही शब्द हैं कि जब आप अपना पहला फल लाए तो आपने कहा, एक भटकता हुआ अरामी मेरा पिता था, और आप इसे व्यवस्था विवरण अध्याय 26 में पाएंगे। डेविड अब इस पंथ का बहुत विस्तार करता है। वह उस पर निर्माण करता है, लेकिन डेविड उसे बदल देता है। वह इसे ओपेरा में बदल देता है। वह मंदिर का मंचन प्रदान करता है। उन्होंने भजनों में लिब्रेटो और संगीत प्रदान किया। और इसलिए अब मोज़ेक अनुष्ठान के साथ, अब हमारे पास यह लगभग है, डेविड मेरे लिए मोज़ार्ट की तरह है। और इससे भी अधिक, वह एक पुनर्जागरण व्यक्ति है। लेकिन उन्होंने मोज़ेक पंथ को लिया और उन्होंने इसे मंदिर का मंचन दिया और उन्होंने इसे अनुष्ठान के साथ आने वाले भजनों का संगीत और लिब्रेटो दिया। इसके अलावा पवित्र स्थल अब यरूशलेम में स्थित था और पवित्र कार्मिक अब हारून और लेवियों के घर से परे विस्तारित किया गया था। पवित्र कार्मिकों में अब राजा के साथ साथ पैगंबर भी शामिल हैं। राजा के साथ भविष्यवाणी आती है क्योंकि भविष्यवक्ता राजा के सामने ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब हमारे पास याजकों के अलावा एक पवित्र राजा और भविष्यवक्ता है जो राजा से बात करेगा। हम भविष्यवक्ता को भजनों में बोलते हुए सुनेंगे, विशेष रूप से भजन 50 में। आम तौर पर कहें तो हमारे पास पवित्र स्थल है जो शाही मंदिर द्वारा प्रतिस्थापित मोज़ेक तंबू था, जिसने इसे ओपेरा में बदल दिया। पवित्र कैलेंडर था, अर्थात पूजा का वार्षिक क्रोनिक लगातार वार्षिक कार्य होता था। वहां साप्ताहिक विश्राम दिन था, विश्राम वर्ष था, वहां पर्व और पवित्र मौसम वगैरह थे। फिर पुरानी वार्षिक संस्कृति के अलावा वह महत्वपूर्ण क्षण भी आया जब आपके पास युद्ध, सूखा या प्लेग था। इसे विस्तृत किए बिना यह सब एक किंग्स अध्याय 8 श्लोक 31 से श्लोक 51 तक है। और आपके नोट्स में मैं आपको 7 अलग अलग प्रकार की विपत्तियां इत्यादि देता हूं। हमने पवित्र ऋतुओं और सामान्य चक्र के बारे में बात की। वह सब्बात साप्ताहिक सब्बात का सामान्य चक्र हो सकता है। त्योहार के दिनों का एक सामान्य चक्र था। 3 त्योहार के दिन, फसह के 3 त्योहार के मौसम, पेंटेकोस्ट और पतझड़, योम किप्पुर के इस परिसर के साथ, प्रायश्चित का दिन, नया साल, पतझड़ का त्योहार, साबुन बूथ, बूथ का जश्न मनाना इत्यादि। आगे जुबली का वर्ष भी था। यह सब दीर्घकालिक और नियमित था, लेकिन अकाल, सूखा, भूकंप, इन सभी चीजों के महत्वपूर्ण क्षण भी हो सकते हैं। सोलोमन यह अनुमान लगा रहा है कि संकट में लोग भी कब मंदिर जाएंगे। इस बारे में कुछ अनिश्चितता है कि ऋषि मंदिर की पूजा में कैसे फिट हुए। साधु नगर द्वार पर अधिक था। तो यह एक बड़ा सवाल है कि ज्ञान शिक्षक मंदिर की पूजा में कैसे फिट बैठता है। जैसा कि हमने देखा, भजन 73 जैसी ज्ञान सामग्री है। वास्तव में मंदिर के भीतर उसका प्रदर्शन कैसा था? मुझे लगता है कि पुजारी ने इस तरह का निर्देश दिया होगा। वह इज़राइल में शिक्षक थे, इसलिए मुझे मंदिर के पुजारी द्वारा लोगों को पढ़ाए जाने के बारे में सोचने में कोई विशेष समस्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यह मंदिर की पूजा का हिस्सा हो सकता है। अब हम स्तोत्र में पंथ के पहलुओं की ओर मुड़ते हैं। मैं मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर की तुलना करके शुरुआत करता हूँ। मंदिर के भीतर पूजा के लिए वाचा संबंधी परोपकारों की मध्यस्थता की जाती है, जिसमें बलिदान के माध्यम से क्षमा भी शामिल है। भीतर मैं कहता हूँ, सब पवित्र है, यह पवित्र है, इसे अलग रखा गया है, बाहर अपवित्र है। दरअसल प्रोफेन शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ प्रो बिफोर फैनम द टेम्पल है। इसका मतलब है मंदिर से पहले, मंदिर के बाहर वह अपवित्र है। तो मंदिर के भीतर आपके पास पवित्र है, मंदिर के बाहर आपके पास अपवित्र है। इसलिए जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, तो आप एक पवित्र क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते हैं। भीतर शाश्वत है, यह अनंत है कि ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी शुरुआत में थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। मंदिर में आप शाश्वत में प्रवेश कर रहे हैं, आप वास्तविकता में प्रवेश कर रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बिना यह सीमित है, यह अस्थाई है, यह गुजर रहा है और लुप्त हो रहा है। मंदिर के भीतर पूर्णता है, मंदिर के बाहर अपूर्णता और पाप है। भजनों की तुलना में विशेष रूप से देखें तो हमारे पास पवित्र स्थल है और हम पहले ही उन भजनों में से एक को पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास सियोन के भजन हैं, और जैसा कि आप भजन पढ़ते हैं, वे सियोन प्रभु के घर, पवित्र पहाड़ी, भगवान के अभयारण्य सियोन में निवास स्थान का उल्लेख करते हैं। और मैं आपको उन संदर्भों की एक सूची देता हूं जो मंदिर को एक पवित्र स्थल के रूप में संदर्भित करते हैं। कुछ स्तोत्रों से संबंधित स्तोत्र सियोन पर्वत के चुनाव का जश्न मनाते हैं। जैसे परमेश्वर ने दाऊद के घराने को चुना, उसने सियोन पर्वत को चुना। बुतपरस्त धर्मों में भगवान स्थानिक रूप से एक स्थान से संबंधित है, उसका संबंध उस पर्वत से है, वह हिल नहीं सकता। इसराइल का ईश्वर सर्वोत्कृष्ट है। माउंट सिनाई में उनकी मुलाकात इसराइल से हुई और फिर उसने माउंट सियोन को चुना। ऐसा नहीं है कि वह स्थानिक रूप से स्वाभाविक रूप से माउंट सियोन से जुड़ा हुआ है, उन्होंने इसे चुना। तो हमारे पास सियोन के गीत हैं। यहां भजन 46 है, ईश्वर हमारा शरण स्थान और शक्ति है और मुसीबत में हमेशा मौजूद रहने वाला सहायक है। इस कारण चाहे पृथ्वी पलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीचों बीच गिर जाए तो भी हम न डरेंगे, चाहे उसका जल बढ़ जाए और झाग बन जाए और पहाड़ उसके उभार से कांप उठें। वहां एक नदी है जिसकी धाराएं परमेश्वर के नगर को अर्थात पवित्र स्थान को, जहां परमप्रधान निवास करता है, आनंदित करती हैं। भगवान उसके भीतर है, वह नहीं गिरेगी। भोर के समय परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में उथल पुथल मच जाती है और राज्य नष्ट हो जाते हैं। वह अपनी आवाज उठाता है, धरती पिघल जाती है। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। आओ और देखो कि यहोवा ने क्या किया है, वह पृथ्वी पर कैसा उजाड़ लाया है। वह पृथ्वी के छोर तक युद्धों को समाप्त कर देता है। वह धनुष तोड़ देता है और भाले को चकनाचूर कर देता है। वह ढाल को आग से जला देता है। वह कहते हैं, शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूं। मैं राष्ट्रों के बीच ऊंचा उठाया जाऊंगा। मैं पृथ्वी पर महान हो जाऊंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ हैं। याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। तो आपके पास सियोन के चुनाव से संबंधित ये भजन हैं। आपके पास अन्य भजन हैं जो भगवान के घर में जाने के योग्य लोगों की पूजा में भागीदारी की बात करते हैं। यह भजन 15 जैसा होगा। यदि आप एक नजर डालना चाहते हैं तो यह भजन 15 डेविड की 10 आज्ञाएं हैं। मैं इसे जल्दी से पढ़ूंगा। इन सभी में विस्तार हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे पढ़ने का कोई मतलब है, बस यह डेविड का एक भजन है। हे प्रभु, तेरे पवित्र तंबू में कौन वास कर सकता है? दाऊद के समय में सुलेमान द्वारा मंदिर बनाने से पहले उसने संदूक के लिए अपना तंबू बनाया था। यह डेविडिक लेखकत्व के प्रमाणों में से एक है कि उनके भजन यहाँ मौजूद एक तंबू के बारे में बात करते हैं। हे प्रभु, जो तेरे पवित्र तंबू में वास करेगा, जो तेरे पवित्र पर्वत पर वास करेगा। फिर वह 3 सामान्यकरण और 3 सकारात्मक कथन देते हैं। वह व्यक्ति जिसका आचरण निर्दोष है, अर्थात ईश्वर और उसकी पूजा के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ ईमानदार है। इसका मतलब पाप रहित नहीं है, बल्कि इसका मतलब ईश्वर के प्रति पूरे दिल से प्रतिबद्धता है, जो धार्मिक कार्य करता है, सेवा करता है, ईश्वर पर निर्भर रहता है, समुदाय की सेवा करता है, जो अपने दिल से सच बोलता है। दूसरे शब्दों में कोई पाखंड नहीं है। फिर वह उसे नकारात्मक रूप से ग्रहण करता है, जिसकी जीभ निंदा नहीं करती, जो पड़ोसी का बुरा नहीं करता और दूसरों पर कलंक नहीं लगाता। कोई गपशप नहीं है और वह पड़ोसी के साथ कोई गलत काम नहीं करता है। तो आपके पास 3 सकारात्मक और 3 नकारात्मक हैं। 7वां और महत्वपूर्ण प्रश्न ईश्वर के साथ हमारे संबंध से संबंधित है, अर्थात आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता उन लोगों के द्वारा दर्शाते हैं जिनका आप सम्मान करते हैं और जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं। वह नीच मनुष्य का तिरस्कार करता है, परंतु यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। इसलिए वह उन लोगों की पहचान करके दिखाता है कि वह भगवान से डरता है। वह उन लोगों का आदर करता है जो यहोवा का भय मानते हैं, परंतु व्यभिचारियों और अपराधियों की भीड़ को वह अस्वीकार करता है। वह उन लोगों का आदर करता है जो आराधना करते हैं, पवित्र हैं और परमेश्वर पर निर्भर हैं। 8वां, वह दुख होने पर भी अपनी शपथ पर कायम रहता है और अपना इरादा नहीं बदलता। दूसरे शब्दों में यह वह व्यक्ति है जो अपनी शादी की प्रतिज्ञा रखता है, जो भगवान के नरक में प्रवेश कर सकता है। ये वही हैं जो अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ते हैं। बेशक भगवान का शुक्र है कि प्रायश्चित है, ईश्वर की क्षमा है, लेकिन हमें उस क्षमा की अपील करनी चाहिए और व्यभिचार का त्याग करना चाहिए। 10 आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले सभी प्रकार के जीवन को त्यागना चाहिए। 5वां, बहुत बहुत ही नुकीला बना हुआ है, जो गरीबों को बिना ब्याज के पैसा उधार देता है, जो निर्दोष के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता है। जो कोई ये काम करेगा वह हिल जाएगा। तो यह एक भजन है जो दर्शाता है कि मंदिर में पूजा में कौन भाग ले सकता है। यह मुझे वापस वहीं ले जाता है जहां से मैंने शुरू किया था कि अनुबंध संरचनाएं होती हैं। आप ईश्वर की उपस्थिति में जबरदस्ती प्रवेश न करें या यह न माने कि आप स्वयं ईश्वर की अनंत वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। वह इनकी मांग करता है जो कि अभिव्यक्तियां हैं, डेविड की अभिव्यक्ति अंतः 10 आज्ञाओं की। क्या आपको लगता है कि 10 को चुनकर डेविड हमें 10 आज्ञाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है और वह उन्हें दोबारा लिख रहा है या उनके दिल में उतर रहा है? मैं सोचता हूं कि 10 हैं क्योंकि 10 आज्ञाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि वह इन सभी आज्ञाओं का एक एक करके अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है। वह आपकी प्रतिज्ञाओं को अपने दिल में रखने का उल्लेख करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ सप्त के दिन या इसके आगे के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो मेरा मानना है कि 10 पूर्णता का प्रतीक है। मुझे लगता है बात यही है। यह पूर्णता है और वे बहुत व्यापक सामान्यीकरण हैं। लेकिन यदि आप इन 10 दाऊद के 10 का पालन करते हैं, तो आप मूसा के 10 का पालन कर रहे होंगे। यदि आप वह करते हैं जो धर्मी है, जो कि ईश्वर पर निर्भरता है, तो आप 10 आज्ञाओं का भी पालन करने जा रहे हैं, मुझे लगता है। स्तोत्र की पुस्तक में पवित्र स्थल के संदर्भों को देखने के बाद अब हम पवित्र ऋतुओं के संदर्भों को देखते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए सप्त के दिन का एक संदर्भ है। भजन 92 सप्त के दिन गाने के लिए था। अमावस्या पर भजन 81 का पाठ किया गया। फिर सुबह और शाम के बलिदानों में कई भजन पढ़े गए। जैसा कि हम देखेंगे, भजन 3:1 सुबह की प्रार्थना है। भजन 4:1 शाम की प्रार्थना है। भजन 5 सुबह की प्रार्थना है। भजन 6:1 शाम की प्रार्थना है। मुझे लगता है कि संभवतः वे भजन सुबह के बलिदान और शाम के बलिदान के संबंध में पढ़े गए थे। क्रॉनिकल हमें बताता है, तब उसने कुछ लेवियों को यहोवा के संदूक के सामने सेवकों के रूप में नियुक्त किया, ताकि वे इसराइल के परमेश्वर यहोवा का स्मरण करें, कृतज्ञतापूर्वक उसकी स्तुति करें और उसकी स्तुति करें। आसाप प्रधान था और उसके बाद जकरिया, येल, शमीरामोत, यहियेल, मत्तत्याह, एलियाब, बनाया, ओबेदेदोम और येल थे जो वीणा और वीणा बजाते थे। आसाप ध्वनि झांझ था। बनाया और यहजीएल याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के आगे नियमित रूप से तुरही बजाते थे। फिर उस दिन दाऊद ने सबसे पहले आसाप और उसके भाइयों को यहोवा के लिए धन्यवाद गाने का आदेश दिया। परंतु यह यहोवा के संदूक के सामने नियमित रूप से किया जाना था। तो ये भजन नियमित रूप से इन दैनिक बलिदानों में गाए जाते थे। मैं इसे लेता हूं। जहां तक पवित्र कार्यों का सवाल है, पवित्र प्रसादों का उल्लेख मिलता है। मैं आपको वे श्लोक देता हूं जो इसका संदर्भ देते हैं। ये भजन 96, प्रभु की महिमा करो, उसका नाम लो, भेंट लाओ और उसके दरबार में आओ। भजन 107, आइए वे प्रभु को उनके अटल प्रेम और मानव जाति के लिए उनके अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद दें। वे बलिदान करें, धन्यवाद बलि चढ़ाएं और आनंद के गीत गाकर उसके कामों का वर्णन करें। भजन 116, ये आभारी प्रशंसा के गीत हैं। प्रभु ने जो मेरे प्रति भलाई की है, उसका बदला मैं उसे क्या लौटाऊं? मैं मुक्ति का प्याला उठाऊंगा और प्रभु का नाम पुकारूंगा। मैं सब लोगों के सामने यहोवा के प्रति अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। मैं तेरे लिए धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे बीच में यहोवा के भवन के आंगन में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के प्रति अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। तो तब पवित्र प्रसाद थे। मंदिर में भविष्य सूचक वचन भी दिए गए थे। भजन 50 इसका एक उदाहरण होगा। यह आसाप का एक भजन है। वह कहता है, पराक्रमी परमेश्वर प्रभु बोलता है और सूर्य के उगने से लेकर अस्त होने तक सारी पृथ्वी को बुलाता है। फिर पद 70 में वह कहता है, हे मेरे लोगों सुनो और मैं बोलूंगा, हे इसराइल मैं तेरे विरुद्ध गवाही दूंगा। मैं ईश्वर हूं तुम्हारा ईश्वर। मैं तुम्हारे मेलबलि और होमबलियों के विषय में जो मेरे सामने नित्य आए हैं तुम पर कोई दोष नहीं लगाता। लेकिन जिस चीज के लिए वह उन्हें दोषी ठहराता है वह अनुबंध और नैतिकता का पालन करने में विफलता है। तो भजन 50 लोगों के खिलाफ मंदिर में दी गई एक भविष्यवाणी है। जहां तक पवित्रता की बात है, हमने पवित्र कार्यों के बारे में बात की है, हमने पेशकशों के बारे में बात की है, हमने भविष्यवाणियों के बारे में बात की है। ऐसे जुलूस भी निकले जो आप कल्पना में जीते हैं। यहां भजन 26 है और भजनकार निर्दोषता के विरोध में कहता है, हे प्रभु, मैं अपने हाथ निर्दोषता से धोता हूं और तेरी वेदी के चारों ओर घूमता हूं। तेरी प्रशंसा ऊंचे स्वर से करना और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना। हे प्रभु, मैं उस घर से प्रेम रखता हूं जहां आप रहते हैं, वह स्थान जहां आपकी महिमा निवास करती है। फिर भजन 68 में वह एक जुलूस का वर्णन करता है। यहां बताया गया है कि जनजातियां कैसे प्रवेश कर रही हैं। आगे आगे गायक हैं, उनके पीछे संगीतकार हैं, उनके साथ युवतियां भी हैं जो डंबल बजा रही हैं। बड़ी सभा में परमेश्वर की स्तुति करो, इसराइल की सभा में यहोवा की स्तुति करो। बिन्यामीन का एक छोटा गोत्र उनका नेतृत्व कर रहा है। वे यहूदा राजकुमारों की बड़ी भीड़ हैं और वे जबूलून और नप्ताली की राजकुमारी हैं। आप जुलूस को लगभग देख सकते हैं, जैसे ही यह प्रवेश करता है जनजातियां अपनी पूजा में प्रवेश करती हैं। फिर तीर्थयात्रा के गीत हैं। वास्तव में भजन 120 से 134 तब गाए गए थे जब इज़राइल ने मंदिर की तीर्थयात्रा की थी। यह भजन 84 है। यह आरोहण भजनों में से एक नहीं है, लेकिन यह एक यात्रा, मंदिर की तीर्थयात्रा और मंदिर के रास्ते के अनुभव को दर्शाता है। यह कितना प्यारा है, यह कोराज के पुत्रों का है। मुझे संदेह है कि मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि यह उनके समुदाय से संबंधित है, शायद उनके समुदाय के भीतर ही बना हो, लेकिन यह कोरहाइट्स द्वारा किया गया था। हे सर्वशक्तिमान यहोवा, तेरा निवास स्थान कितना मनोहर है। मेरी आत्मा प्रभु के दरबार के लिए तरसती है, बेहोश भी हो जाती है। मेरा हृदय और मेरा शरीर जीवित परमेश्वर के लिए चिल्लाता है। यहां तक कि गौरैया को भी एक घर मिल गया है और अबाबील अपने लिए घोंसला बनाएगी जहां वह अपने बच्चों को पा सकेगी। आपकी वेदी के पास एक स्थान, सर्वशक्तिमान भगवान, मेरे राजा और मेरे भगवान। बेशक पक्षियों ने वहां अपने घोंसले बनाए क्योंकि मंदिर में कोई हत्या नहीं हो सकती थी और वे वहां सुरक्षित थे। यह ऐसी तस्वीर है जैसे भगवान के मंदिर में पक्षी सुरक्षित है, किसी को सुरक्षा और सुरक्षा है। धन्य हैं वे जो तेरे घर में रहते हैं, वे सदैव आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। धन्य हैं वे जिनकी शक्ति तुम में है, जिनके हृदय तीर्थयात्रा पर लगे हैं। जैसे ही वे बाका, जिसका अर्थ है आंसुओं की घाटी से गुजरते हैं, वे इसे झरनों का स्थान बना देते हैं। शरद ऋतु की बारिश भी इसे तालाबों से ढक देती है, तो उनके आंसू जीवन के झरनों में बदल जाते हैं। जब तक प्रत्येक सियोन में परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं हो जाता, तब तक वे ताकतवर होते चले जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनो। वह अब मंदिर में है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनो। हे याकूब के परमेश्वर, मेरी सुनो। और वह किस लिए प्रार्थना करता है? राजा, हे भगवान, हमारी ढाल को देखो, अपने अभिषिक्त पर अनुग्रह की दृष्टि करो। और फिर वह इस तीर्थ की सुंदरता पर विचार करता है। आपके दरबार में एक दिन अन्यत्र के हजारों दिनों से बेहतर है। दुष्टों के तंबू में रहने की अपेक्षा मैं अपने परमेश्वर के भवन का द्वारपाल बनना अधिक पसंद करूंगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। प्रभु कृपा और सम्मान प्रदान करते हैं। वह उन लोगों से कोई अच्छी वस्तु नहीं रोकता जिनकी चाल निष्कलंक है। सर्वशक्तिमान भगवान उसे आशीर्वाद दें जिसका भरोसा आप पर है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक तीर्थ स्तोत्र है और वह भगवान की उपस्थिति के लिए तत्पर है। और जब वह भगवान की उपस्थिति में आता है तो वह राजा के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान राजा पर कृपा दृष्टि रखे। तब उसे एहसास होता है कि पृथ्वी पर ईश्वर की उपस्थिति पूजा और प्रार्थना से बेहतर कुछ भी नहीं है। यहां आरोहण के गीतों में से एक भजन 122 है। यह डेविड का एक भजन है। मैं उन लोगों के साथ आनंदित हूं जिन्होंने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें। हे यरूशलेम, हमारे पांव तेरे फाटकों पर खड़े हैं। जेरूसलम को एक ऐसे शहर की तरह बनाया गया है जो एक दूसरे से बहुत सघन रूप से जुड़ा हुआ है। इसराइल को दी गई विधि के अनुसार वहां गोत्रें अर्थात प्रभु के नाम की स्तुति करने के लिए जाती हैं। वहां न्याय के लिए सिंहासन दाऊद के घराने के सिंहासन खड़े हैं। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वे सुरक्षित रहें। आपकी दीवारों के भीतर शांति और आपके गढ़ों के भीतर सुरक्षा हो। अपने परिवार और दोस्तों की खातिर मैं कहूंगा, शांति आपके साथ रहे। हमारे परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तुम्हारी भलाई ढूंढूंगा। तो आप तीर्थयात्रा और बलिदान चढ़ाने, भविष्य सूचक गतिविधि इत्यादि जैसे कुछ पवित्र कार्यों को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि यह दूसरे दृष्टिकोण के लिए अलग से व्यवहार करने योग्य क्यों है कि हम मंदिर में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर भजन गाए गए थे। हम समझते हैं कि धर्म की उस बाहरी अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब आप भजन पढ़ेंगे और मंदिर में रहेंगे तो आपको उनके प्रति बेहतर समझ और सराहना होगी। वे पवित्र वस्तुओं का संदर्भ देते हैं। वहां भजन 84 की तरह पवित्र वेदी है। वहां पवित्र कटोरा है। मैं कृतज्ञ स्तुति के स्तोत्र में मुक्ति का प्याला चढ़ाऊंगा। वे बैनर के बारे में बात करते हैं। यह तब होता है जब राजा युद्ध के लिए बाहर जा रहा होता है। वे भजन 20 में राजा के लिए प्रार्थना करते हैं जब वह युद्ध के लिए जा रहा होता है, और भजन 21 में उसके लौटने पर उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन भजन 20 में क्या हम आपकी जीत पर खुशी से चिल्ला सकते हैं और अपने भगवान के नाम पर अपने झंडे उठा सकते हैं? इसलिए प्रत्येक जनजाति का अपना बैनर होगा और यह भगवान और उनकी जीत के लिए एक पवित्र बैनर होगा। जैसा कि राजा ने कहा था, प्रभु आपके सभी अनुरोध स्वीकार करें। भजन 150 में मैं यहां संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करता हूं। यह भजन का चरमोत्कर्ष है और पूरा ऑर्केस्ट्रा भगवान की स्तुति करने के लिए आता है। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। शक्तिशाली स्वर्ग में उसकी स्तुति करो। उसकी शक्ति के कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा करें। उसकी अत्यधिक महानता के लिए उसकी स्तुति करो। मेढ़े के सींग के शब्द से उसकी स्तुति करो। तब वीणा और सारंगी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। दफ बजाकर और नृत्य करके उसकी स्तुति करो। तार और बांसुरी बजाकर उसकी स्तुति करो। झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हर उस चीज के साथ जिसमें सांस है, गूंजते झांझों के साथ उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति। प्रभु की स्तुति। वहां न केवल पवित्र वस्तुएं और पवित्र कार्य और पवित्र स्थल और पवित्र कैलेंडर हैं, बल्कि पवित्र कार्मिक भी हैं। जैसा कि हमने टिप्पणी की, मंदिर वास्तव में स्वर्ग की अभिव्यक्ति थी। स्वर्ग में भगवान और मंदिर में भगवान के बीच कोई तीव्र द्वंद्व नहीं था। यह मंदिर स्वर्ग का प्रतिरूप था। यह स्वर्ग के बारे में सोचने का एक तरीका था। हम ईश्वर के बारे में सोच ही नहीं सकते। रूपक से अलग हम स्वर्ग के बारे में सोच ही नहीं सकते। ईश्वर के रूपक के रूप में उसकी तुलना की गई है। क्या वह जिसके कान हैं, क्या वह जो कान बनाता है सुनता नहीं? क्या वह जो आंख बनाता है नहीं देखता? और इसलिए हम ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, कि वह हमें देखता है। वह हमें देखता है और उसे हम पर दया आती है इत्यादि। ये सब हैं, हम थियोमोर्फिक हैं। हम ईश्वर कैसा है इसके रूपक हैं। और मंदिर स्वयं स्वर्ग और इज़राइल के लिए एक रूपक है और मंदिर का राजा एक रूपक है। ऐतिहासिक स्तर पर मसीह और उसके चर्च की एक तस्वीर है। लेकिन पवित्र कर्मियों में देवदूत भी शामिल हैं। हे प्रभु को धन्य कहो, हे उसके स्वर्गदूतों, हे पराक्रमी लोगों जो उसके वचन पर चलते हो, उसके वचन का पालन करो। प्रभु को, उसके सभी यजमानों को, उसके सेवकों को जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, आशीर्वाद दें। और फिर पुजारी हैं, आओ हम उसके निवास स्थान पर चलें। आइए हम उनके चरण पीठ पर पूजा करें। अपनी शक्ति के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान को जा। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहें और तेरे पवित्र लोग आनंद से जय जयकार करें। हे लेवी के घराने, लेवीय लोग हैं, यहोवा को धन्य कहो। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कहो। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कहो। और फिर यह पौरोहित्य से आगे तक फैल जाता है। तुम जो यहोवा का भय मानते हो, यहोवा को आशीर्वाद दो। हम भजन दो में राजा को देखेंगे जो उसका पवित्र राजा बन जाता है। भजन 44 में हम मंदिर में सेना से मिले। और फिर हमारे पास ईश्वर से डरने वाले लोग हैं और वे सभी पवित्र कर्मियों का हिस्सा हैं। ठीक है, हम पंथवादियों का परिचय यहीं समाप्त करेंगे। अब हम एक या दो विशेष भजनों को देखेंगे जो मंदिर में राजा के राज्याभिषेक की विधि से संबंधित हैं। तीन प्रश्न। आपने कहा कि मंदिर स्वर्ग की प्रतिकृति है, और अब हम स्वयं एक हैं और एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ महसूस करते हैं। ओ हाँ, मैं उस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ जिसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ईश्वर कैसा है। थियोमोर्फिक, मॉर्फिक, ईश्वर जैसा बना हुआ। और इसलिए हम भगवान की छवि हैं। और इस प्रकार उसने हमें आंखें दी कि हम जान ले कि वह देख सकता है। उसने हमें कान दिए तो हम जानते हैं कि वह सुन सकता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के पास साकार आंख या साकार कान है, लेकिन हम जानते हैं कि वह देखता है और वह सुनता है। दूसरे, आप इस बारे में बात कर रहे थे कि स्वर्ग कैसे स्वर्ग की प्रतिकृति है। यह मंदिर स्वर्ग की प्रतिकृति है। यह हमें कुछ हद तक यह समझने की अनुमति देता है कि स्वर्ग कैसा है। और मैं नए नियम में विवाह के संबंध के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि पॉल भगवान और चर्च के साथ हमारे संबंधों की चर्चा से विवाह या इसके विपरीत कैसे आगे बढ़ता है। उसी तरह की बात, मुझे इसे इस तरह रखना होगा। यह विवाह दिखाने का एक और तरीका है, मसीह और उसके चर्च के बीच के संबंध को दिखाना कि वे कैसे संबंधित हैं। और वास्तव में इसे मसीह के रूप में बोलना चाहिए। आप मुखियापन के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं, चर्च के लिए मसीह जो भी है, पति अपनी पत्नी के लिए है। और इसलिए कि पति पत्नी के लिए मर जाए और पत्नी हर बात में पति की आज्ञा का पालन करे जैसे हम हर बात में मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। यह एक सिद्धांत है जो खो गया है। ठीक है, और पूरा मुद्दा, आप पहले वास्तुकला के बारे में बात कर रहे थे और ईसाई धर्म के कुछ पहलू कैसे समझते हैं कि वास्तुकला के बीच एक संबंध है और हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पूजा क्या है और भगवान क्या है। तो कैथेड्रल एक क्रॉस पर रखे गए हैं और ईसाई धर्म के अन्य पहलुओं की तुलना में इस प्रकार की चीजें हैं जहां चर्च की इमारत एक चौकोर बॉक्स है और यह बिल्कुल बदसूरत है और वास्तविकता के साथ रूपों के संबंध की कोई समझ नहीं है। सही। और मुझे लगता है कि अगर हम एक इमारत क्या कर सकती है इसकी स्पर्शनीय दृश्यमान कल्पना का उपयोग नहीं करते हैं तो हम खुद को दरिद्र बना लेते हैं। मैं सोचता हूं कि जहां आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं उस व्याख्यान माला को उस व्याख्यान माला के ऊपर रखने का महत्व है जहां आप धर्म ग्रंथ का प्रचार करते हैं, ताकि व्याख्यान माला हमेशा धर्म ग्रंथ के अधीन रहे। मुझे लगता है कि जब आप किसी चर्च में जाते हैं तो यह उसके धर्मशास्त्र और उसकी वास्तुकला के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो मुझे लगता है कि यदि आप सामने एक गायन मंडली रखते हैं और आप बीच में एक मंच रखते हैं और यही काफी है। यह सिर्फ नाटक है। यह मनोरंजन में बदल सकता है। आपके पास गायन मंडली है और वे सजते संवरते हैं और यह वास्तव में मनोरंजन है। उपदेशक पर ध्यान केंद्रित है न कि परमेश्वर के वचन पर, जबकि अन्य लोग टेबल को बीच में रखेंगे। यह मसीह का बलिदान है जो केंद्र में है। इसलिए मुझे लगता है कि आप प्रतीकवाद से बच नहीं सकते। क्या कुछ परंपराओं में ऐसा ही हो रहा है जहां उपदेशक किनारे से उपदेश देता है बीच से नहीं? हाँ, वे अक्सर इसके केंद्र में प्रभु का भोज रखेंगे। और अंत में जब आप बात कर रहे थे तो कुल मिलाकर जो बात मुझे प्रभावित कर रही थी वह यह थी कि मुझे पता है कि हम किस तरह से पूजा करना चाहते हैं और कैसे हम भगवान के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इस मामले में हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन आप जो वर्णन कर रहे हैं उसमें बहुत अधिक औपचारिकता है। पुराने नियम में पुराना नियम बहुत अच्छी तरह से परिभाषित है। वहां उतनी रचनात्मकता नहीं है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में मुझे यह अपेक्षाकृत अपरिभाषित लगता है जो मुझे लगता है कि आपको बहुत अधिक स्वतंत्रता देता है। तो मेरा पहला मंत्रालय 1955 में था। यह एक ग्रीष्मकालीन मंत्रालय था। इनमें से एक मंत्रालय लुइसियाना में सऊदी भारतीयों के पास था। चर्च की स्थापना करने वाले पादरी ने उन्हें लगभग कोई निर्देश नहीं दिया। वे वैसे ही पूजा कर सकते थे जैसी वे पूजा करना चाहते थे, बशर्ते कि वे प्रभु का भोज और बपतिस्मा लें। खैर, जब मैं वहां पहुंचा तो सभी महिलाएं एक तरफ थीं। मेरा मतलब है, स्वाभाविक रूप से उन्होंने यही किया। वे यौन रूप से अलग हो गए। तो महिलाएं एक तरफ थीं, पुरुष दूसरी तरफ थे। अब महिलाएं बाईं ओर तो बिखरी हुई थीं, लेकिन दाईं ओर पुरुष पीछे की दो या तीन पंक्तियों में या आगे की दो या तीन पंक्तियों में केंद्रित थे। तो मैंने उसका नाम प्रिय भाई ब्रदर लीड्स बताया। मैंने भाई लीड्स से कहा, मैं महिलाओं और पुरुषों को समझता हूं, लेकिन पुरुषों के साथ क्या हो रहा है? खैर, उन्होंने कहा, पिछली पंक्ति के लोग या तो बचाए नहीं गए हैं या संगति से बाहर हैं। और जब आप उपदेश देते हैं तो आप पिछली पंक्ति में उपदेश देते हैं। यह डॉक्टर ब्रूस वाल्टके और भजन की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या 20 पवित्र स्थल ऋतुए वस्तुए और कार्मिक है।